وقت بہت مختصر ہیں عصر مغرب کے بیچ میں, میں دو ایک باتیں آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. آپ نے عصر کی نماز پڑھی, امام کے پیچھے آپ نے نیت کی کہ میں چار رکعت عصر کی فرض پڑھتا ہوں امام کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ باندھے, اس لیے کہ عبادتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نے نکاح میں شرکت فرمائی ہے, نکاح میں آپ آئے ہو, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے, یہ بھی عبادت ہے. تو شاید آپ میں سے کتنوں نے شرکت کی نیت کی ہوگی, کتنوں نے نیت نہیں کی ہوگی. نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں دو ایمان والوں کے ایسے عمل کے اندر شرکت کر رہا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے دونوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. نکاح جو کرتا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس نے اپنے عہد ایمان کو محفوظ کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي, اور جو اب باقی ایمان رہا آدھا اس میں اللہ سے ڈرتا رہے. تو ہم نیت کریں, رسمی طور پر ہم سب کام کر دیتے ہیں, جو عبادت رسم بنتی ہے رسم, تو ساری خیر و برکت اس میں سے اٹھ جاتی ہیں. جہاں کہیں بھی عبادت کو رسم بنایا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ساری خیر کو اٹھا لیتا ہے. اللہ نے یہ مبارک رشتہ سب سے پہلے نازل فرمایا, ماں باپ کا رشتہ پہلے نہیں ہوا. جنت کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آیا. آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں, آدم علیہ السلام کی کوئی ماں نہیں, حوا کا کوئی باپ نہیں, حوا کی کوئی ماں نہیں. تو جنت کے اندر سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کی شکل میں نہیں, جنت میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کی شکل میں وجود میں آیا. قرآن مقدس کے اندر جتنی آیتیں سنسار کو خوبصورت انداز میں گزارنے کی اللہ نے نازل فرمائی, کسی اور عبادت معاملات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, خوش تھے. مغیرہ ابن شعبہ بہت خوش تھے, آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ میری منگنی ہو گئی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تم نے اپنی منگیتر کو دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو عربوں میں کہاں رواج ہے. عرب کے اندر اس وقت جس وقت ہمارا نبی مغیرہ ابن شعبہ کو پوچھ رہے ہیں, اس وقت یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی لڑکا اپنی بننے والی بیوی کو دیکھے, جہاں رشتہ ڈالا گیا ہے اس کو دیکھے, بہت عیب سمجھا جاتا تھا. ایسے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ اس لڑکی کو دیکھ لیا کرو, اس لیے کہ زندگی تمہیں گزارنی ہے, زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ رہ کر کے. دیکھو کتنا خوبصورت نظام ہمارا نبی بتلاتا ہے, تاکہ آگے چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی اپنے گھر آئے اور اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہ رہے, ہماری بیٹی خوشی کے ساتھ کسی اور کے گھر جاتی, کسی اور کی بیٹی خوشی کے ساتھ ہمارے گھر آتی. کاش ہماری بیویاں اور کاش ہماری مستورات اور ہماری ماں بہنیں ساس بننے کے بجائے ماں بن کر کے رہے تو کتنا اچھا نظام ہو جائے. ایک عورت با اخلاق ہوتی ہے, بڑے بہترین اخلاق ہوتے ہیں, ماں کی شکل میں بہت اچھی ہوتی ہے. کسی کی بیوی ہوتی ہے, بیوی کی شکل میں بہت اچھی, کسی کی بہن ہے تو بہن کی شکل میں بہت اچھی, لیکن جو ہی ساس بنتی ہے تو سارے اخلاق ختم ہو جاتے. ساس وہ ساس بن کر رہتی ہیں, ماں بن کر کے نہیں رہتی. تو میرے بھائیوں, یہ جتنا اونچ نیچ ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر اور دن بدن ہم جھگڑے دیکھ رہے ہیں, یہ ساری نحوست آتی ہیں عورتوں کی طرف سے. جہاں کہیں بھی ایسے معاملات کے اندر مرد حضرات توجہ نہیں دیتے اور یہ سارے معاملات عورتوں کے حوالے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ ساری خرابیاں اور برائیاں وجود میں آتی ہیں. اور ایک تو ہماری برکتیں اٹھتی ہیں, अल्लाह के हबीब की फरमा बरदारी न करते हुए हम निकाह करते हैं, शादी बियाह के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं, तो भी मेरे भाइयों ये सब हालात सामने आते हैं। एक बुजुर्ग की आदत थी कि वो 1,25,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, 1,25,000 मरतबा। जब 1,25,000 का अदद पूरा हो जाता तो अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर देते, ये उनकी आदत थी। एक मरतबा 1,25,000 मरतबा उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अल्लाह के हबीब के दरगाह में पेश किया, आपकी खिदमत में पेश किया, अल्लाह के नबी की जियारत हुई। वो बुजुर्ग देखते हैं कि आपका सीना मुबारक जख्मी है, ऐसे जख्म है कि आपके सीने से लहू बह रहा है, खून बह रहा है। तो वो जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा था गमजदा हो गए कि मेरे परवरदिगारी क्या हो गया कि मेरे नबी की यह हालत मैं देख रहा हूं। पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप जख्मी नजर आ रहे हो, आपका सीना मुबारक बड़ा जख्मी है, क्या आपको आपके किसी दुश्मन ने तकलीफ पहुंचाई, आपके किसी दुश्मन ने आप पर हमला कर दिया? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मुझे मेरे दुश्मनों से कोई गिरा नहीं है, मुझे मेरे दुश्मनों से कोई तकलीफ नहीं है, वो मुझे नहीं मानते इसलिए वो मेरी शान में गुस्ताखी करे न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गिरा और शिकवा तो उन मुसलमानों से है कि जो मुझको अपना हबीब मानते हैं और जो मुझको अपना आखिरी नबी तस्लीम करते हैं और मुझको इमामुल अंबिया और सैयदुल अंबिया मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद गैरों के तौर तरीक पर चलते हैं और रुसुमात को जन्म देते हैं, उस वक्त मेरा सीना इस तरह जख्मी हो जाता। एक ईमान वाला ईमान की हालत में और मुझे अपना बरहक नबी मानने की हालत में जिस वक्त वो अपनी नजी जिंदगी के अंदर रस्मों को जन्म देता है, उस वक्त मेरा सीना जख्मी होता। हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं होती। अब जैसे दिन जाते हैं ऐसे गुनाह भी हम देखते हैं। जवान में आप देखो, अभी शादी हुई, रुखसती हुई, स्टेटस तैयार हुआ, स्टेटस पर बीवी और उसका फोटो तैयार। अब अपनी बीवी को कितने लोगों को दिखा रहा है, उनके चेहरे, बीवी के चेहरे को कितने गैर महरम देख रहे हैं, पता नहीं ये नस्ल किस सिमत में जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। बर्थडे, ये बर्थडे कौन सी मुसीबत है, पूछो हमारे बुजुर्गों को और हमारे वडीलों और सज्जनों को, आज तक इन्हें पता नहीं चलता कि बर्थडे कौन सी मुसीबत है। अरे सालों के कटने के ऊपर भी कहीं कैप काटे जाते हैं और एक साल जिंदगी का पूरा हो गया, एक साल तुम्हारी जिंदगी का कम हो गया, क्या किसी नुकसान के ऊपर भी कैप को काटा जाता है? ये नई नस्ल ला रही है, हमारे ये नौजवान ला रहे हैं, पता नहीं किस सिमत में ये लोग जा रहे हैं। नए नए क्राइम और नए नए गुनाह देखने को मिलते हैं। हमारे नबी का सीना उस वक्त जख्मी होता है जब ईमान वाला मर्द, ईमान वाली औरत अपने हबीब को नाराज करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर गैरों के तौर तरीक को लाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी के सामने पीर के दिन और हफ्ते में दो मरतबा जुमेरात के दिन आमालनामा पेश होता है कि ये सब तुम्हारी उम्मत के आमाल हैं जो उन्होंने किए। वो अगर अच्छे अमल होते हैं हमारा नबी खुश होता है, और अगर ऐसे ही अमल हमारे नबी के सामने आते हैं तो हमारे नबी का सीना जख्मी होता है। मेरे भाइयों, बहुत दिल पर लेने की जरूरत है, बहुत दिल पर लेने की जरूरत है। हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारी औलाद किस रुख पर जा रही है और हमारे घरों के अंदर किन लोगों के तौर तरीक हमारे घरों में जन्म ले रहेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। रस्म में बेचारा एक गरीब इतना परेशान होता है। एक लिस्ट एक गरीब मेरे पास लेकर आए, लिस्ट, कौन सा लिस्ट, कि ये चीजें जो हर घर से लड़की को देनी पड़ती है, हर घर से देनी पड़ती, वो लिस्ट 50,000 तक जा रहा, 50,000 तक। अब ये बेचारा दिन में 200 रुपए कमाने वाला, 200 रुपए कमा करके 5 बेटे हैं, 4 बेटियां, 1 लड़का है, उनका गुजरान चलाने वाला, अगर उसी की बेटी का निकाह हो रहा है अब ये मजबूर नहीं दे रहा है तो भी बाद में मुसीबत खड़ी होती है। लड़की अगर कुछ नुकसान और कुछ कमी पेशी के साथ पहुंचेगी, शुरू में तो बहुत लंबी लंबी बातें करते, हमको तो नेक होनी चाहिए बस, नमाजी परहेजी होनी चाहिए, ये औरतों के अल्फाज होते हैं, नमाजी परहेजी हो बहुत हो गया, लेकिन दो तीन चार पांच महीनों के बाद ये सब ताप में चला जाता है और वहां पे क्या आता है, वहां जहेज आता है, वहां चीजें आती है। फिर उस बच्ची की हर खूबी को ऐप बनाकर पेश करते हैं, हालांकि ऐप को खूबी बनानी चाहिए लेकिन उसकी अच्छी हर आदत को ऐप बनाकर पेश करते हैं, किसी की बेटी को बदनाम करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, शरीफ आदमी हमेशा अपनी बेटी अपनी बीवी को इज्जत देता है, शरीफ आदमी हमेशा अपनी बीवी को इज्जत देता है, और कमीना वो है, कमीना लकीन के अल्फाज है हदीस के अंदर, और लकीन का तर्जमा कमीना होता है। आपने फरमाया कमीना वो आदमी है कि जो अपनी बीवी को जलील करता है, उसकी बुराई करता है, लोगों के सामने उसके ऐबों को उजागर करता है। अल्लाह के नबी ने इसको कमीना कहा और शरीफ उसको कहा कि जो अपनी बीवी की इज्जत करे। हर एक का हक अल्लाह के हबीब ने बताया, माँ बाप को सामने रखो तो माँ के हक में फरमाया कि उसके कदम के नीचे चंदन है, बाप के हक में फरमाया कि वो जन्नत का दरवाजा है, और बीवी के हक में आपने फरमाया सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो अपनी बीवी का हक अदा करे। बीवी के हक में आपने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जो अल्लाह की इताअत करे और अपने खाविन की इताअत करे। आपने फरमाया अगर मेरी उम्मत के अंदर एहतराम और इज्जत का सजदा जायज होता, इस उम्मत के अंदर हराम कर दिया गया जो अगली उम्मतों के अंदर जायज था, कोई बड़ा आदमी हो रिस्पेक्टेड आदमी हो उसके सामने सजदा करना अगली उम्मतों में जायज था, लेकिन हमारी अल्लाह के हबीब की उम्मत में इसको भी हराम कर दिया। आपने फरमाया कि अगर इस सजदे की इजाजत होती तो मैं हर बीवी को कहता कि वो अपने खाविन को सजदा करे, खाविन को सजदा करे, इसलिए कि वो उसका हक अदा करने में न धूप देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न बारिश, न अपनी बीमारी देखता है, हर हाल में बेचारा बिस्तर छोड़ करके बाहर चला जाता है और अपने बाल बच्चों की देखभाल करने के लिए, तरबियत करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए अपनी जवानी को गला देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले वजन किस अमल का किया जाएगा, हिसाब तो नमाज का होगा लेकिन वजन किस चीज का किया जाएगा। आपने फरमाया सबसे पहले वजन उस खर्चे का किया जाएगा जो खर्चा बाल बच्चों को दिया हो, सबसे पहले उसका वजन होगा। हमारे कितने नौजवान जाये हो गए, उनकी औरतें बेचारे आकर के शिकायत कर दी कि रात के वक्त कोरेक्स दवा पीते हैं तो बोलते भी शर्म आती, ऐसा बोलते भी शर्म आती है, कोरेक्स दवाइयां जिसमें ड्रग्स होता है, अब वो ठोक ठोक करते हैं, पी पी करते हैं, इतने वो खोखले हो जाते हैं कि उनमें सकत और ताकत नहीं होती मजदूरी करने की। अब ये दिन में क्या करेगा, रात में तो पी लेता है, दिन में क्या करेगा, दिन में पड़ा रहेगा, अब उसको पता ही नहीं कि मेरे बच्चों की क्या जिंदगी, मेरे बच्चे क्या पढ़ते हैं, कहाँ स्कूल जाते हैं, क्या तालीम हासिल करते हैं, कोई परवाह नहीं। बीवी बेचारी किस तरीके से दिन काट रही है उसको कोई परवाह नहीं, और किस तरीके से मेरे बच्चों को खिला पिला रही है उसको कोई परवाह नहीं, क्या गरज कर रही है उसे कोई परवाह नहीं है, वैसे ही अपनी जिंदगी को जाये कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये इस उम्मत का जवान तबका है मेरे भाइयों, और जिस कौम का नौजवान जिस वक्त इन रास्तों के ऊपर चलने लगता है तो मेरे भाइयों ऐसी कौम को इज्जत के साथ जीने का कोई हक हासिल नहीं होगा, वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक वो कौम खो देती है कि जिसका नौजवान इन रास्तों के ऊपर चलता है। बहुत अब हमको बहुत सोचना पड़ेगा और बहुत फिक्रें भी करनी पड़ेगी, हर एक को फिक्र करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो माँ बाप को करनी पड़ेगी, ताकि मेरे भाई ये सब बुराइयां खत्म हो, अल्लाह तबारक व तआला होने वाली निकाह को कबूल फरमाए और उनकी नस्लों के अंदर ऐसे दाई और नेक सारे मुत्तकी परहेज़गार लोग पैदा फरमाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए उम्मत की भलाई और जो उम्मत की खिदमत हो अल्लाह तआला उनके लिए कबूल फरमाए। मुख्तसर वक्त है इसलिए आपके सामने मुख्तसर दो एक बातें की अल्लाह तआला कहना सुनना कबूल।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में महर की रकम मस्जिद में दी जाती है, यहाँ जितने